ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी संवत 2050 तदनुसार दिनांक 24 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम
वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण 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 नारायण। अपनी जो ये संसार में स्थिति है, इस स्थिति से परमात्म तत्व के तरफ पहुंचना है, उस तत्व को प्राप्त करना है। जैसे कोई पढ़ाई करता है तो अ आ ई उ क ख ग घ इन अक्षरों को याद करता है, तो इन अक्षरों को याद करते करते वो आचार्य परीक्षा तक पहुंच जाता है, आचार्य में हो जाता है राष्ट्रवधा, आचार्य मानो पूर्ण। ऐसे ए बी सी डी पढ़ता पढ़ता एम ए हो जाता है, मन उदी का अधिपति हो जाता है, मालिक हो जाता है। तो क्रमशः ये विकास करते हैं, तो ये है विद्या। अनेक तरह की लिपि है, अनेक तरह की भाषाएं हैं, अनेक तरह के रस्म रिवाज है, इनके शब्द होते हुए भी धीरे धीरे हम उन्हें ऊंचे बढ़ जाते हैं। यह सब बढ़ने पर भी हम रहते हैं लौकिक ही, अलौकिक किताबें नहीं पहुंचते। भगवान ने कहा है त्वा विमौ पुरुषौ लोके क्षरस्ताक्षर एव च, लोक में दो पुरुष है क्षर और अक्षर। ऐसे कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते ये देवता क्षिप्रदी मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, ये लोके में कहा है। तो भगवान ने जगत में ये बात बताई है, लोक में ये बात है। तो लोक एक दूर एक परलोक, ये दो होते हैं। जैसे ये परमात्मा तत्व के एक लोक है, और परलोक क्या है? परलोक वैकुंठ आदि जितने स्वर्ग आदि के लोग ये परलोक है। और वास्तव में परलोक क्या है कि यहां से मनुष्य जन्म करके फिर भी मनुष्य बन गया तो वो भी परलोक है, वो लोक नहीं रहा। मतलब पहले वाला शरीर नहीं आया, दूसरे लोक में आ गया तो वो भी परलोक है। और लोगों का विभाग है, लोक शब्द है, ये जनता का वाचक भी है, उसको लोग नहीं कहते, लोग कहते हैं लोग। और लोक मनुष्यों को भी कहते हैं, मनुष्य लोक है, ये भी लोक है, पर ये हम लोग होता है लोग, इनको भी लोक शब्द कहते हैं। आप हम जो सब लोग, हम लोग इसमें लोक होता है प्राय करके, मतलब लोक का प्रयोग होता है, अनुचित नहीं है। ये सब लौकिक बातें हैं, और परमात्म तत्व को प्राप्त करना है वास्तव में वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है। ये सब जितने लोग जाते ये लौकिक है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन, आप ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोग तक के लोग जा करके फिर पिंड जन्म लेते हैं। तो ये जन्म मरण का चक्कर चलता है, ये लोक कहलाता है। इस लोक के तीन विभाग किए हैं, स्वर्ग मर्त्य पाताल, स्वर्ग लोग है, ये पृथ्वी लोग है, मध्य लोग और एक पाताल लोक है। इन तीन लोगों को 14 भुवन कहते हैं। जैसे भूलोक, भूवर लोक, मर लोक, जल लोक, तप लोक, सत्य लोक, ये ऊपर के लोग है। अतल, बितल, सुतल, सातल, महातल, पाताल, ये नीचे के हैं। तो इस बुद्धि लोग से लेकर के 6 लोग ऊपर तक के 7 लोग होते हैं, 7 लोग जो 14 भुवन होते हैं। तो ये 14 लोग है, तो 14 लोग भी कहते हैं, 3 लोग भी कहते हैं, त्रिलोकी भी कहते हैं। ये सब लोक व्यवहार है। अभी जो मनुष्य लोक है ये, इसकी महिमा ज्यादा की गई है। मनुष्य लोक है वो अलौकिक तत्व को समझने के लिए है। ये खास मनुष्य की बात है, वो जरा ध्यान देकर आप लोग सुने। परमात्मा तत्व है वो लोक में, परलोक में सब जगह समान रीति से है, फिर भी भगवान के विलक्षण लोग है। उर्द मूल मधस्वागम, तो ऐसे भगवान का वैकुंठ लोक है, सत्य लोक है, वो ऊपर है। वो ऐसा ऊपर की केवल हमारे लोगों की तरह नहीं है, वो अलौकिक है, ये लौकिक है। ब्रह्म लोक तक के लौकिक लोक है, वो अलौकिक है, लोक से अलग है। तो हम जो इकट्ठे हुए यहाँ पर उस अलौकिक तत्व की प्राप्ति के लिए हुए हैं। इसमें अधूरे रह जाएंगे तो ब्रह्मलोक तक जाएंगे और वहां से लौट कर आना पड़ेगा। और जो ठीक ज्ञान हो गया है वो क्रम मुक्ति से जाएगा तो ब्रह्मलोक के बाद में मुक्ति में चला जाएगा, छूट जाएगा। वो जो मुक्ति है सर्वथा छूटना है, वो किससे छूटना है? मुक्ति नाम लोग समझ लेंगे मुक्ति को स्थान है, स्थान नहीं, मुक्ति शब्द का अर्थ है छूट जाना। तो छूट जाना किससे? राग द्वेष, हर्ष, शोक, पाप, पुण्य, ठीक बेठीक, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जो संसार के थपेड़ा है इनसे ऊंचा उठ जाना, उसका नाम मुक्त है। वे मुक्त मरने के बाद भी हो जाते हैं और जीते जी भी हो जाते हैं। ये बात खूब ध्यान देने की है, इधर ख्याल करें जैसी बात है। शरीर के रहते रहते ही हम मुक्त हो जाते हैं, तो ये राग द्वेष, हर्ष, शोक, अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊंचे उठ जाते हैं हम। तो इनका पर हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान होता है अनुकूलता प्रतिकूलता का, सुख का, दुख का, ज्ञान सब होता है, विचार सब होते हैं, पर इनके प्रभाव से प्रभावित हो जाए ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव जब तक पड़ता है तब तक वो मुक्त नहीं है, वो बद्ध ही है। उसमें साधनों की श्रेणी से कुछ कम पड़ता है, कुछ असर ज्यादा पड़ता है, कुछ बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये है श्रेणियां है, परंतु बंधन में ही है। जब तक सर्वथा निर्विकल्प न हो जाए, निर्विकल्प बोध, निर्विकल्प दो तरह का होता है, एक निर्विकल्प होती है वृत्ति, एक निर्विकल्प होता है बोध। तो निर्विकल्प वृत्ति तो समाधि में हो जाती है, समाधि करते करते, पर निर्विकल्प बोध है वो सबसे ऊंचा माना गया है, वो अलौकिक तत्व है, वो लौकिक नहीं है। समाधि जहाँ तक लौकिक होती है समाधि, वो समाधि भी लौकिक ही है, क्योंकि वो कारण शरीर की है, चिंतन है, ध्यान है, ये है अंतकरण की वृत्ति। जैसे समाधि भी अंतकरण की वृत्ति है, वो अंतकरण वृत्ति होते हुए भी वो कारण शरीर की है। अंतकरण वृत्ति ये सूक्ष्म शरीर की है, और उनसे जो समाधि है वो अंतकरण से एक स्थिरता है। अंतकरण की वृत्तियां है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। वो निरुद्ध समाधि होती है, वो हो गया था असली। तो एकाग्र समाधि है, वे समाधियां यही है। निरुद्ध समाधि तक भी अंतकरण है, परंतु अंतकरण की स्थिर अवस्था है। उस स्थिर अवस्था से ऊंचे जाते हैं तब हम गुणातीत होते हैं। समाधि तक गुणातीत नहीं होते हैं। इसमें वेदांत के विषय में जो अद्वैत सिद्धांत है सबसे ऊंचा माना जाता है, उसमें भी बड़े बड़े आचार्यों ने व्युत्थान और समाधि दो अवस्था मानी है जीवन मुक्त में। परंतु वास्तव में जो आर्ष ग्रंथ है उनके देखने से मालूम होता है कि मुक्तावस्था में दो अवस्था नहीं होती, वहाँ समाधि और व्युत्थान दो नहीं होते। समाधि और व्युत्थान होते हैं तब तक योग की समाधि है, यहाँ की समाधि है, ये ऊंची नहीं है। ये दोनों मिटती है तब होती है सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा लोक धारणा, ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। तो सहजावस्था स्वाभाविक सहजावस्था, वो सहजावस्था समाधि से भी ऊंची है, उसमें व्युत्थान नहीं होता। जहाँ ज्ञान की भूमिकाएं बताई है वहाँ ज्ञान की भूमिका तीन बताई है, साधन, चौथा बताया स्वरूप, और तीन बताई है जीवन मुक्त की अवस्था। ऐसे सात भूमिका ज्ञान की बताई गई है। तो चौथी का भूमिका ज्ञान है, चतुर्थी भूमिका ज्ञानम, तिस्रस्यु साधनम पुरा जीवन मुक्ते रवस्थास्तु परास्तृष्ट प्रकृतिता, तीन जीवन मुक्ति अवस्था मानी है। तो जीवन मुक्त अवस्था में समाधियों का वर्णन आता है, उसमें आता है कि पहली अवस्था जब होती है तो वो व्युत्थान व्युत्थान हो जाता है स्वाभाविक। दूसरी अवस्था में मानो, दूसरी अवस्था का अर्थ छठी, पहली अवस्था मानो पांचवी, तब तो ज्ञान चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था के बाद जो तीन अवस्था है उसमें पहली अवस्था इसका अर्थ होता है पांचवी अवस्था, पांचवी छठी सातवी, ये तीन। तो ये पहली अवस्था है जीवन उसे स्वतः व्युत्तिष्ठते प्राद्य द्वितीय परबोधित और तृतीय उत्तिष्ठते नहीं वह सदा भवदित अन्वय। पांचवी भूमिका में स्वतः व्युत्थान होता है, छठी में दूसरे के जगाने से जगता है, और सातवें में जगता ही नहीं सदा भवदित अन्वय वैसा ही रहता है। ऐसे अवस्थाएं बनी गई है। तो ये सात भूमिका बताई गई, तो सात भूमिका होती है, ये भी अलौकिक है। और ज्ञान में बताई गई थी, योग वास्तव वर्णन है, और ग्रंथ वेदांत ग्रंथों में वर्णन आता है इसका। तो ये सात भूमिका है। अब विचार ये करो भूमिकाएं बताइए, तो भूमिकाओं का वर्णन भी जीवन मुक्त अवस्था में होता है, और वास्तव में होता है वो जो तत्व ज्ञान हो गया है चौथी भूमिका, वो पूर्ण अवस्था हो जाती है, उसमें व्यवहार सामने रहता है, तब छठी सातवीं पांचवी छठी सातवीं भूमिका नहीं होती व्यवहार वाले की, चतुर्थी भूमिका ही होती है। मन चतुर्थी भूमिका होने पर भी उसके बंधन नहीं था, वो सर्वथा मुक्त हो जाता है, वो अवस्था मुक्त हो जाता है। उनमें विचार कौन है, शास्त्रों के रचना वाले विचारक हुए हैं पंडित, उन लोगों ने उसमें दो अवस्था मानी है जीवन मुक्ति अवस्था में भी, जिसमें संन्यास लेना चाहिए। वो संन्यास होता है वो दो तरह का होता है, एक विभिदिशा संन्यास होता है, एक विद्युत संन्यास होता है। तत्व ज्ञान के लिए जो किया जाए संन्यास वो विभिदिशा संन्यास है, जानने के लिए संन्यास है, और इस जान तो लिए अब अगर विद्युत संन्यास है, तो विद्वत संन्यास का प्रयोजन है कि विशेष विक्षेप से रहित होकर के पांचवी छठी सातवीं भूमिका में जल्दी चढ़ जाए। ये जीवन मुक्ति विवेक में बड़ा सुंदर विवेचन आया है इसका। परंतु विचार कर देखा जाए तो मुक्ति होने के बाद फिर उसको विद्युत संन्यास लेना पड़े ये बात है नहीं। इस बात को ध्यान दें, जो पढ़े लिखे सज्जन है वे विषय ध्यान दें और फिर मेरे से प्रश्न करें। वास्तव में तत्व ज्ञान होने के बाद अवस्था अंतःकरण की होती है और अंतःकरण की अवस्था का नाम है ये अवस्था पांचवी छठी सातवीं होती है, तत्व की अवस्था नहीं होती। परमात्मा तत्व में अवस्था है ही नहीं, और जहाँ तक अवस्था है वहां तक प्रकृति का संबंध है, प्रकृति के संबंध में ही अवस्था होती है। उसके संबंध को लेकर सात भूमिका है, मानते ज्ञान की भूमिका, पर आप क्षमा करें है अज्ञान की भूमिका, मान प्रकृति के अंदर ही है। ऐसे अज्ञान की भी सात भूमिकाएं हैं, जैसे ज्ञान की भूमिका है ऐसे अज्ञान की भी सात भूमिकाएं हैं। तो ये बदबू यह सब है लौकिक ही, ऐसे देखा तो लौकिक ही है। तत्व ज्ञान जो चौथी भूमिका में ठीक हो जाता है तो वो हो जाने के बाद में परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी, अब उसका जन्म मरण नहीं होगा। तो वे क्या हो गए, वे संसार से ऊंचे उठ गए, वो संसार में नहीं रहे। तो उसने बताया है तेर्जित स्तर्गो ये शांग साम्य स्थित मन। पढ़े लिखे सज्जन ज्यादा ध्यान दे मेरी बात की तरफ। गीता कहती है कि इहैव तैर्जित स्वर्ग, इहैव इस जीवित अवस्था में ही उन्होंने संसार को जीत लिया। किन लोगों ने जीत लिया, कि ये शाम मन साम्य स्थितम तई ही इहैव लोक जीत। जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने यहाँ रहते हुए ही संसार को जीत लिया। संसार को जीत लिया का अर्थ क्या, क्या कोई राजा महाराजा हो जाता है, चक्रवर्ती हो जाता है? कि चक्रवर्ती संसार को जीतने वाला चक्रवर्ती नहीं होता, वो तो चक्रवर्ती संसार ही होता है। जीत लिया इसने, मानो ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना हर्ष होता है, न चिंता होती है, न शोक होता है, ये कोई आते ही नहीं पास में जिन संसार को जीता। तो आत्म तत्व में तो है ही नहीं, आत्म तत्व है उसमें राग द्वेष हर्ष शोक है ही नहीं, तो है ही नहीं उनकी बात तो सत्य ही है, वो कोई साधन की बात नहीं, उसका वर्णन नहीं क्या करें, वो तो है ही ऐसा ही। तो यहाँ जो वर्णन कराई है ये मुक्तावस्था है, तो मुक्तावस्था में ये शाम मन साम्य स्थितम, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, साम्यावस्था में स्थित मन हुआ है वो याद रखना है। स्वरूप की कहते हैं स्वरूप में समता है, तो स्वरूप में तो विषमता कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं है। मन में साम्यावस्था हुई है, ये शांग मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने संसार को जीत लिया। और संसार में साम्यावस्था नहीं, राग द्वेष हर्ष शोक सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूल लेकर के जो प्रभाव पड़ता है ये संसार का प्रभाव है। चाहे किंचित मात्र रेख हो, केश जितनी भी रेखा भीतर आई है तो उसमें संसार का असर है, संसार से ऊपर नहीं उठे हैं, वे संसार में ही है। ये सब मन साम्यावस्था, मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, मन पर रंग न बदले, व्यवहार में पता नहीं लगता है, और स्वयं अपना विचार करे, मुक्ति चाहता है, कल्याण चाहता है, तो उसके लिए ये बड़ी सुंदर कसौटी है। तो मन में कभी हमारे हर्ष शोक राग द्वेष होता ही नहीं, मन पर असर पड़ता है कि नहीं, कि मन पर पड़ता है, मन पर पड़ता है तो अभी जीवन मुक्त अवस्था नहीं है, संसार को जीता नहीं है, अभी तक संसार में है। याद रखो मैंने ये बात कही थी, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तन, ब्रह्म लोग उठावे तब तक ही पुनरावर्ति है, जन्म मरण में आते हैं ब्रह्म लोग तक। तो मन में साम्यावस्था पूरी न आवे तब तक वास्तव में बोध नहीं है। ब्रह्म लोग तक ऊंचे चले जाए तो वहां भी बोध नहीं है, पुनरावर्ति न पीछे आते हैं। तो यहाँ करते हुए अपने विचार से कर लिया, ठीक हो गया, आप समझो क्या ब्रह्मलोक से ऊंचे हो गए हम? ब्रह्मलोक तक ऊंचे गए तो वैराग्य में कहते हैं, ब्रह्मलोक अलम भोग के सह सपन को त्याग, वेद अर्थ गवता मुनि अर्थ वैराग्य, वो वैराग्य है। तो ब्रह्मलोक त्रिणी कालो वैराग्य से अवधिर मता, वैराग्य होता है, वैराग्य का हेतु होता है, वैराग्य का स्वरूप होता है, वैराग्य का फल होता है, वैराग्य की अवधि होती है। ऐसे ही जो उपरति है, उपरति का हेतु होता है, उपरति का स्वरूप होता है, उपरति का फल होता है, उपरति की अवधि होती है। ऐसे तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान का उपाय होता है, तत्व ज्ञान का स्वरूप होता है, तत्व ज्ञान की फल होता है, तत्व ज्ञान की अवधि होती है। ऐसे चार चार चीजें इनकी वर्णन करी है पंचदशी में। तो ये चीजें है, परंतु वास्तविक तत्व बोध है उसमें ब्रह्मलोक तक ही छोटे हैं, वो यहाँ ही इस अवस्था में मनुष्य शरीर के रहते रहते उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ एक परमात्मा तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती नहीं। चारों बातें ना पहले वैसी अवस्था किसी की थी, ना है, ना होगी, ना हो सकती है, वो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति है। तो तत्व की प्राप्ति होने पर ये बात है, पहले तो 14 भुवन है, त्रिलोकी भी है, जन्म मरण भी है, व्यवहार भी है, और हम मृत्युलोक में आ जाते हैं। यहाँ तो यहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चार वर्ण है, फिर ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ये विभाग है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, ये लोग इसमें भी है। तो इसमें सब चीजें है। कैसे है कि एक ही जो ये मृत्युलोक हुआ, एक भूमंडल हुआ मृत्युलोक में भी, भूमंडल में फिर अनेक कैसे हैं, जैसे आपका शरीर एक है, एक होते हुए हाथ अलग है, पांव अलग है, सब अवयव आपके अलग अलग है, एक एक अवयव अलग अलग है, हाथों में अंगुली अंगूठा एक है, इनमें भी एक होते हुए भी इनमें अलग अलग फर्क है। फर्क ही बहुत बड़ा 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 फर्क है। लोग कहते हैं खान पान एक करो, सगाई ब्याह एक साथ में करो, एक साथ रहो, बिल्कुल गलती की बात है। एकता हो सकती नहीं, प्रकृति की एकता होगी तो प्रलय हो जाएगा। ये प्रकृति है, प्रकृति की साम्यावस्था होती तो प्रलय होता है, प्रकृति की विषम अवस्था में संसार होता है, और परमात्म तत्व में साम्यावस्था में मुक्ति होती है, और उसमें विषमता होने से संसार होता है। तो प्रकृति के एकता करोगे तो महाप्रलय हो जाएगा, सत्व रजतम साम्यावस्था तीनों गुणों की हो जाएगी। तो ये खान पान अपना एक करना है, ये महाप्रलय की तरफ जाना है, ये उद्धार नहीं है, सुधार नहीं है, महाप्रलय है ये, बंधन हो जाएगा और मुक्ति होगा नहीं कभी भी। इसमें अपने स्वे स्वे कर्माणि अभिरता संसिद्धि लभते नर, अपने अपने कर्म में ठीक लगा हुआ संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, व्यस्त हो, वानप्रस्थ हो, कोई कान हो, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, ये इतना ही भेद अपने हिंदुस्तान में है। हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है और यहूदी है, पांच है। ये पांच तरह की सृष्टि अपने मनुष्य में है। अब इसमें मुक्ति कोई चाहता है तो मुक्ति सबकी हो सकती है, मनुष्य मात्र की मुक्ति हो सकती है, ये गीता आदि सिद्धांत से मानते। इसमें मतभेद है, मतभेद दर्शनों का और संप्रदायों का ऐसा है। कोई कहता है कि मुक्ति ब्राह्मण की होती है। कोई कहते ब्राह्मण की नहीं, ब्राह्मण भी संन्यास लेगा तब मुक्ति होगी, नहीं की मुक्ति नहीं होगी। वो ऊंचा उठ जाएगा, फिर पहले शूद्र बनेगा, फिर दूसरे किसी जन्म में बनिया बनेगा, फिर किसी जन्म में क्षत्रिय बनेगा, किसी जन्म में ब्राह्मण बनेगा, और ब्राह्मण का भी ब्रह्मचारी होगा, फिर ग्रस्त होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, फिर संन्यास लेगा, संन्यास के बाद में श्रवण करेगा, फिर मनन करेगा, फिर निध्यासन करेगा, तब उस समाधि लगेगी, वो सर्वग्रह निर्विकल्प होगी, निर्विकल्प में सभी जो निर्विज समाधि है, निर्विज समाधि होने पर मुक्ति होगी, ऐसा क्रम बताया शास्त्रों में। तो लंबा रास्ता बताया बहुत सा, और गीता सीधी बात कहती है, मनुष्य मात्र का कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो गया, मनुष्य मात्र, मनुष्य मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई ज्ञान हो, चाहे पारसी हो, यहूदी हो, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो कल्याण मनुष्य मात्र होता है। अगर ऐसा ही माने हम इस संप्रदाय को, इस सिद्धांत को, तो मनुष्य मात्र की महिमा है कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, तो क्या भाग्य हुआ। क्रम से तो पशु पक्षी भी होते ही है, उनसे होते रहेंगे, होते रहेंगे, ये सब लौकिक बातें हैं, सब लौकिक है। वास्तव में मुक्ति सन्यासी हो गई तो विचार करो। थोड़ी सी एक बात कहता हूँ, मैं किसी का खंडन नहीं करता हूँ, मैंने जो पढ़ा है, सुना है, विचार किया है, मनन किया है, उसके अनुसार मैं बोलता हूँ। इस बात से गड़बड़ी भी हो जाए तो माफी कर देना। क्यों कि भाई जिसकी जैसी उपज वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहाँ से लाए, वो दूसरा कहाँ से लाए, तो वही अपने मन कहेगा, उसके सिवा दूसरा क्या कहेगा। तो इस वास्ते आप क्षमा लो, क्षमा करें। ये अगर सिद्धांत मान लिया जाए तब तो फिर चार वर्ण होंगे। एक मनुष्य में कहते हैं, हिंदुओं में, भारतीय जनता में चार वर्ण होंगे, चार वर्ण होंगे तो चार आश्रम होंगे, चार चौक 16वां अंश हुआ परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी, हिसाब लगा जाना। चार वर्ण होंगे, फिर चार वर्णों में एक ब्रह्मचारी, ये आश्रम चार, तो एक वर्ण के चार चार आश्रम होंगे, तो चार चार 16वां अंश हुआ। 16वां अंश हो करके भी फिर ग्रस्त में नहीं होगा तो साधु होने से होगा, तो मुक्ति बहुत दूर हो जाएगी। और मनुष्य मात्र है वो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। भगवद गीता कहते हैं, अभी से शूद्राचारो, शूद्राचारो शुष्ट दुराचारी, बढ़िया से बढ़िया, और ये पिशु पाप योने, पाप योने पशु पक्षी आदि भी कौन हो, ये अंत है, महत्व है, जिनको अर्जुन आज कहते हैं, वे है शांति है, साचिया है, ये सब के सब मुक्ति के अधिकारी हो जाए। गीता के अनुसार से मनुष्य मात्र, उसमें स्त्रियों की नहीं है। जैन आदि कहते हैं पुरुष की मुक्ति होती है, स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती। भगवत गीता करे मुक्ति तो जो चाहे उसी होती है, हृदय से चाहना चाहिए कल्याण की, उसकी मुक्ति हो जाएगी। चाहे ना भीतर में ऐसी हो, कोई दूसरी चाहना किंचित मात्र रहे नहीं, जीने की भी चाहना नहीं है, ऐसी चाहना सर्वथा मिटे, मुक्ति हो जाए। भगवत गीता में कामना के त्याग की बात कही है खास, तो कामना कोई तरीके नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, तो उसे मुक्ति हो जाएगी। कोई क्यों हो, भाई हो, बहन हो, चाहे किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में रहता हो, कोई क्यों हो, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति होने में तो खास ये बात है। अब विचार करो कि ब्राह्मण की मुक्ति होगी अथवा साधु होने से मुक्ति होगी, तो मुक्ति वास्तव में अपने स्वरूप की स्थिति से मुक्ति होती है, शरीर से मुक्ति होती है। शरीर से मुक्ति तो मरता जब हो जाती है। शरीर में भेद है ब्राह्मण क्षत्रिय देव शूद्र, शरीर से ऊंचा आत्मा में वहां भेद कहाँ रहेगा, उसमें कोई मुक्ति का अधिकारी, कोई मुक्ति का अधिकारी नहीं है। विरोध बात बन नहीं सकती है, कैसे बनेगी। शरीर का अध्यास तो छोड़ना पड़ेगा, कोई मृत्यु का अधिकारी नहीं है। विरोधवाद बन नहीं सकती है, कैसे बनेगी। शरीर का अध्यास तो छोड़ना पड़ेगा, और ब्राह्मण हूँ मैं, सन्यासी हूँ मैं, ऊंचा हूँ, तो ये तो अभिमान होगा। और देह अभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, जहाँ देह का अभिमान है वहाँ सब के सब दोष आते हैं। और किस आते हैं, शरीर के अभिमान से तो आते हैं, और शरीर के अभिमान लेकर चलेगा मुक्ति कैसे होगी, और मुक्ति होगी तो शरीर का अभिमान कैसे रहेगा, ये चीज ठहर नहीं सकती। गीता का सिद्धांत इतना गहरा है जितना हरेक का नहीं है, साक्षात भगवान की वाणी है, तो वे भक्ति की प्राप्ति के लिए अभिचेत सुचुराचार हो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अभिचेत सी पापे व्या सर्वे व्या ज्ञान सर्वे व्या पाप कृतम, व्याकरण पढ़े वो थोड़ा ध्यान दे मेरी तरफ, बिना पढ़े हुए तो मान लो भाई पढ़े बिना क्या होता हूँ, पढ़े हुए वो ध्यान दे, अपिचेदसी पापे भ्या है, ये बहुवचन है, संपूर्ण पापी जितने संसार के पापी हो पर किसी के पहम रह जाए तो उसको दूर करने के लिए भगवान कहते हैं अपिचेदसी पापे भ्या सर्वे भ्या, सर्वे भी अर्थ पड़ा पापी भैमे, फिर सर्वे भी कहते हैं तो कोई उनमें समुदाय में ले ले, कोई ब्राह्मण में ले ले, कोई क्षत्रिय में ले ले, कोई हिंदुओं में ले ले, कोई मुसलमानों में ले ले, ईसाई ले ले, कि नहीं सर्वे भय अपिचेदसी पापे भय सर्वे भय, अब सर्वे भय होने के बाद फिर पाप के तमा दिया है तो पाप कृत और पाप कृतर और पाप कृतम और पाप पापिष्ठ स्थिर ईर्षण बहुत बहु में होता है तो उसमें भी बहुत बहुत बताए ऊंचे प्राकृतम पाप करने वालों में संपूर्ण पापियों से अधिक पापी हो और दो से अधिक पाप कृत होता है, संपूर्ण पाप करने वाले पापियों में भी प्राकृतम कम पर अष्ट स्थन पड़ते हैं, इनसे अगर व्याकरण खत्म है, इनसे कोई व्याकरण शब्द कहता नहीं, कोई बात व्याकरण में बहुत आप लिख लो फिर पैसे पूछ लेना तो व्यापक खत्म हो जाती है, इतना नीच से नीच ज्ञान प्रवेश नहीं हुआ ज्ञान रूपी नौका से पाप उतर जाएगा नहीं, ज्ञान शरीर पवित्र में ही विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है, तत् स्वयं योग से सिद्ध काले वो योग से कर्म योग से सिद्ध हुआ बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, ये गीता कहती है। तो परमात्मा के तत्व की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा समझो तो ये बात बताई है, और भक्ति के द्वारा अपचेदशी पापे अपचेद सुदुराचारो भजते मान सुदुराचार कह दिया, ये विश्व पाप योने कह दिया, वही परम गति को प्राप्त हो जाता है। और ये दो विशेषता से कहा है, तीन बात बताई है गीता ने, तीन भी बताया है भागवत में, कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों का वर्णन आता है, इनमें मत भेद है कि कर्मयोग केवल अंतःकरण मल दोष दूर करता है, भक्ति योग केवल विक्षेप दूर करता है, ज्ञान योग आवरण दूर करता है, ठीक बात ये भी एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है कि कर्मयोग से पहले सिद्धि होती है फिर भक्ति योग में आत्म साक्षात्कार होता है, नहीं कारण ज्ञान योग कर्मयोग पीछे ज्ञान योग तो आत्म साक्षात्कार होता है और परमात्मा की प्राप्ति फिर भक्ति योग से होती है। तो वे कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति योग मानते हैं, और शंकराचार्य की संप्रदाय में ज्ञान योग पहले कर्मयोग, कर्मयोग और फिर भक्ति योग फिर ज्ञान योग मानते हैं, या आचार्यों का मत भी रामानुजाचार्य मानते हैं पहले कर्मयोग फिर होता है ज्ञान योग फिर होता है भक्ति योग, वैसे मानते हैं। इन सब सिद्धांतों के देखने के कारण से भक्ति और ज्ञान की दो की महिमा बहुत आई है शास्त्रों में। तो भागवत के एकादश स्कंद के बीसवें अध्याय में ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वानपेक्षक सलिंगान आसमान त्यक्त्वा सरे अभिगोचर, ये उसमें लिखा है योगास्त्रयो में आप लोग था, उस बीसवें अध्याय में तीन लोग बताए कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग, उनके अधिकारी बताए हैं, उनकी योग्यता बताई है, उनके लक्षण बताए हैं, परंतु अंत में निर्णय किया ज्ञान निष्ठो विरुक्तो वा विरुक्त से विरुक्त ज्ञान निष्ठ है तब तो ज्ञान हो गया, और मद भक्तो वा अनपेक्ष जिसके कोई इच्छा नहीं है ऐसा मेरा भक्त है, ये दो बताए वा ज्ञान निष्ठो विरुक्तो वा मद भक्तो वा अनपेक्षक सलिंगान आश्रमान त्याग आश्रम त्याग सलिंगान ब्रह्मचारी के क्या चिन्ह होते हैं, गृहस्थ के क्या चिन्ह होते हैं, वानप्रस्थ क्या होते हैं, और जो संन्यास दंडी या दंड आदि क्या चिन्ह है, सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा शरीर अवधि गोचर, चाहे सो करे, चाहे सो खाए पिए, चाहे जल जाए। बड़ी भिन्न बात है, अवधूत कोटि के संतों के लिए ऐसी बात आई है, क्योंकि उसमें कोई पाप है ना, पुण्य पाप उनका है भाई, तो ऊंचे उठ गए। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं, भक्ति द्वारा सिद्ध होते हैं, योग के द्वारा सिद्ध होते हैं, उनके लक्षण गीता में अलग अलग बताए हैं, उनमें थोड़ा बारीक भेद है आपस में, पर वो है सब मुक्त, इसमें संदेह नहीं। मुक्त होते हुए भी जो ऐसे मुक्त पुरुष है, चाहे ज्ञान निष्ठ हो, सर्वामत भक्त हो, वह अनपेक्ष भगवान का भक्त हो, उनमें क्या बात होती है, उनमें दो तरह के होते हैं। वो जो सिद्ध पुरुष होते दो है, एक आचार्य कोटि के होते हैं, एक अवधूत कोटि के होते हैं। अवधूत कोटि वाले संतों के लिए कोई विधि निषेध नहीं है, शास्त्र में असमान निवर्तते, शास्त्र सब बता करके शास्त्र खुद हट जाता है, स्मृतियां और वेद भी उनसे हट जाते हैं, वो सर्वथा स्वतंत्र है। मैं स्वतंत्र उस श्रृंखल नहीं है, उस स्वतंत्र होते हुए भी मर्यादा है। इस वास्ते यदा चलती श्रेष्ठ तत्व देवेतरो जन स यत प्रमाण कुरुते लोकस्त अनुवर्तते, उसके आचरणों का लोगों पर असर पड़ता है। तो ऐसा होता है तो वो शास्त्र से निरशुद्ध काम नहीं करता, परंतु उसके ऊपर शास्त्र लागू नहीं होता, ये बात बताइए। तो अवधूत कोटि के मस्त रहते हैं दत्तात्रेय जी की तरह, वे अवधूत कोटि के होते हैं। आचार्य कोटि के जो श्री शंकराचार्य महाराज आदि हुए, ये आचार्य कोटि के हुए हैं। तो आचार्य कोटि के संत ठीक मर्यादा का स्थापन करते हैं, मर्यादा का विवेचन करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, और से मालन पालन करवाते हैं। वे आचार्य कोटि के होते हैं। तो वे तत्वज्ञ होने पर दो तरह के संत होते हैं, एक अवधूत कोटि के होते हैं, एक आचार्य कोटि होते हैं। तो आचार्य कोटि होते हुए बतावे कि भी ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, वैश्यों को क्या, शूद्रों को क्या करना चाहिए, तो ये सब आचार्य कोटि वाले बताते हैं, करके बताते हैं, क्या करके बताते हैं, विवेचन करके बताते हैं ठीक तरह से, इसी तरह से हमें आचरण करना चाहिए। अब ये बात एक और याद है, अभी क्षमा करें आप लोग, अभी मैंने सुना है कि राज कहता है कि इसमें धर्म रहित होना चाहिए। धर्म रहित तो कुत्ता गधा भी नहीं है, सूर भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, ये भी अपने धर्म में है, पर इनका धर्म मनुष्यों की तरह नहीं है। ध्यान देना, इनके स्वाभाविक धर्म में ये स्थिति है। आप देखो तो आपको ठीक मालूम होगा, गधा है ना, वो श्रावण के महीने में घास भी नहीं खाता है, कुत्ता कार्तिक के महीने नहीं करता है, और मेरी माँ में बिल्ली अपने धर्म वैसी होती है। इस तरह से हमें अपने काम वृत्ति की जागृति होती है, तो और मनुष्य के लिए सब व्यवस्थाएं हैं, खुली है। ध्यान देना धर्म की बात, तो वे धर्म कोई शास्त्रीय आज्ञा और सो नहीं है, उनके स्वाभाविक है, क्योंकि वहां उनके साक्षी उनके शास्त्र नहीं है, शास्त्र पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, जाना नहीं सकते। अब इस पर थोड़ा सा गहरा विचार करो कि जब कुत्ता बिगड़ता है कार्तिक में, गधा बिगड़ता है श्रावण में, बिल्ली बिगड़ती है माघ में, तो ये बिगड़ते हैं, मनुष्य बिगड़ता है बारह महीना, तो मनुष्य में धर्म नहीं होगा तो मर्यादा कौन बताएगा? क्या कुत्ते और गधे हैं मनुष्य जिनके स्वाभाविक धर्म होता है? इनको श्रृंखला में धर्म ही ला सकता है, किस तरह किसी भी धर्म को छोड़ दिया, शासन बहुत लगा दिया, टैक्स बहुत लगा दिया, कमी श्रद्धाचारी हो गया, दुराचारी हुए, शासन से श्रद्धाचारी नहीं बढ़ा सकते, धर्म ही बढ़ा सकते हैं श्रद्धाचारी, कि भाई मैं ब्राह्मण हूं कैसे ऐसा काम करूं। वो आपको भीतर से लगाम रखता है, ऊपर का शासन क्या करेगा, छिप करता है, जो करेगा, मैं धर्म छिप करके भी नहीं कर सकता, छिप करके एकांत में कोई नहीं देखे ऐसी जगह भी पाप नहीं कर सकता, कि ये पाप करना पाप है, ये तो धर्म नहीं है। ध्यान दिया होगा, आप लिख लेना जो शंका हो। अभी जरा मैं बोल रहा हूँ, मेरा बेग निकाल दूं, इसे आप पढ़ लें, सुन लेना, लिख लेना शंका, फिर कर लेना शंका। तो धर्म के बिना वृक्ष नहीं है महाराज, जाति के बिना वृक्ष नहीं है। आम कितनी जाति के होते हैं, केला कितनी जाति के होते हैं, आप यहाँ खेरड़िया है, आपके बमूल है, इनमें स्त्री जाति और पुरुष जाति है, और इसमें जो खेरड़ी की सांगरी होती है खोखा होता है, वो खोखा खारा होता है और मीठा होता है, और उल्टी होने वाला होता है और मीठा, उल्टी नहीं होते, ऐसे होते हैं। ये जातियां हैं अलग अलग, जब वृक्षों में जाति है और वृक्षों में खुद में जाति ऐसी है, जैसे पीपल है ये ब्राह्मण जाति है, नीम आदि ये क्षत्रिय जाति है, और दूसरे ये शूद्र जाति के हैं, तो उनमें जातियों में फर्क है। मैंने ये बात देखी है सज्जनों, पूरी सुनी हुई नहीं है, मैंने सुनी इतनी नहीं है जितनी कई बातें मेरे को देखने में आई है। नोखा की बात है, चातुर्मास में रहे थे वहां, तो हम लोग सब स्नान करते थे, तो स्नान करते जल जाता था, वो स्नान का जल पीपल में डाल दिया, पीपल के पत्ते खराब हो गए, कुल्ला थूको और स्नान का जल जाओ तो खराब हो गया पीपल, बमूल थोड़ी खराब हो जाएगा, वो ब्राह्मण है, वो पवित्रता से ठीक होता है, अपवित्रता करोगे तो उस पर असर पड़ेगा। पीपल के जड़ में काटते हुए खून देखा है मैंने अपनी आंखों से, पीपल के थोड़े आ जाएंगे खून आ जाएगा, आग के दूध तो आ जाएगा, खून नहीं आएगा। और पीपल की छाया में हरेक वृक्ष बढ़ सकता है, और आमली होती है बहुत बड़ी, जिसके घास भी ऊपर नहीं ऊंचा ऊंचा, छोटा छोटा होकर बुझ जाएगा, जहां तक छाया पड़ेगी जब वृक्ष उग नहीं सकता, और पीपल की छाया में हरेक वृक्ष उग सकता है, उनकी उदारता है, आओ सब स्थान देता है, वो इमली स्थान नहीं देती। मैंने देखा है, ये कोई पुस्तकों में पढ़ी हुई नहीं है, मैं दिखा सकता हूँ, आप जाकर देख लो। तो वृक्ष दूजों को दबाता है, जहाँ खेड़ी होती है उसमें भी बाजरी छोटी होती है, और जहाँ पर भो है और बूझा रहा है वहां मट्टी में देखो तो वहां बाजरी बड़ी बड़ी होती है, वहां बाजरी को बल मिलता है उस खाद से, उस खेड़ी के नीचे बल नहीं, खेड़ी दबाती है, ऊंची ऊंची खेड़ी में नहीं उठती। तो इनमें भी दबाना रखना शासन करना ये इनमें भी है, ऐसे पक्षियों में है, ये जो शिक्र है ये क्षत्रिय है, ये जो कबूतर है ये ब्राह्मण है। कलकत्ते में गया, जो को बने हुए फलके और चावल चुगते थे कबूतर, मेरे को आश्चर्य कैसे बातें हैं, जहां पर ऐसा नहीं चुगते, हरेक जगह कबूतर ऐसा नहीं चुगते, कबूतर सूखा चलते हैं, ब्राह्मण है ये, हाथ में रोटी खरीड़ी पावे अपनी, इनमें ये ब्राह्मण बना है, क्षत्रियो बना है उसमें, इनमें सब में जाति है। आगभूषण जी को जो शप दिया तो साप दिए तो क्या बोले, शपथ यो पक्षी चंडाला, तो चंडाल पक्षियों में चंडाल भी होते हैं, शूद्र भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण भी होते हैं, ये तो पक्षी चंडाला कहने क्या जरूरत थी, चंडाल विशेष कैसे दिया गया, क्या अंधे थे लोग, इन्होंने कह दिया। तो इनमें सब में जातियां है, अब जाति एक कर दो मिटा दो धर्मरहित कर दो, क्या है ये, साथ विचार नहीं करते हैं। अरे धर्म नहीं हो तो आप जो राज्ञा राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा पालन करना, दंडे के जोर करना तो हरेक कर लेगा, पशु ही कर लेगा, परंतु राजा की आज्ञा प्रजा को मांगनी चाहिए, ये तो धर्म ही सिखाता है, और कुछ सिखाता है, माँ बाप का कहना मानो धर्म सिखाता है कि शासन सिखाता है, कोई गुरु की आज्ञा मानो, माँ को बड़ा आदर दो, माँ का कितना ऊंचा आदर, जिसमें आज कहते हैं कि स्त्रियों का बड़ा खराब किया ऋषि मुनियों ने, स्त्रियों का निरादर किया, इनकी ऐसा करी, अरे निर्दय कैसा कर दिया, स्त्रियों का बड़ा आदर है, ये मातृशक्ति है, पिता से 100 गुना अधिक माँ को मानो। आज कहते हैं हम स्त्रियों के हिमायती हुए हैं कि स्त्रियों को आचार्य बनाएंगे, स्त्रियों को ऊंचा दर्जा देंगे, ये आचार्य होगी, ये सब चर्चा कर रहे हैं, रिश्तियों को ऊंचा दर्जा, रिश्तियों की बड़ी महिमा, रिश्तियों को मैं उत्थान करते हैं और लड़की हो पेट में तो उसको गिरा देते हैं, गर्भ गिरा देते हैं। ये आदर है महिला जाति का, हम कहते हैं मातृशक्ति है, इसका नाश करो तो नाश हो जाएगा आपका। आप रह नहीं सकते, जी नहीं सकते और रह नहीं सकते कि लड़की अगर मैं परीक्षा होगी लड़के को गर्भ गिरा दू। ये मातृशक्ति का अपमान है, महान अपमान है मातृशक्ति का। स्त्रियों की हिमायती करते हैं, ये कौन शक्ति आप कैसे कर दोगे? गर्भ में आ जाए तो छोरी गिरा देते हैं, वो कौन है? वो माँ है, वो आगे माँ बनने वाली है, वंश बढ़ाने वाली है, वो साक्षात माता है। तुम पिता से 100 गुना अधिक, कहीं 10 गुना अधिक माँ का दर्जा दिया है। वो मातृशक्ति को पैदा ही नहीं होने देते और स्त्रियों को हिमायती मानते, कहाँ अकल गई है पता नहीं हमें, क्या विचार कर रहे हैं, इतना तिरस्कार कर रहे हैं। अभी गणना हुई, मैंने एक बात सुनी है, कहां तक सती मैंने कहा सुनी हुई सती बिल्कुल मैंने सुनी हुई, मैं संदेह नहीं है। जयपुर में परीक्षा की गई, कुमारे छोरे कितने हैं और छोरियां कितनी हैं, दोनों की गणना करी तो उसमें 3 छोरों के बीच में 2 छोरी है। अब 2 छोरी 2 ब्याह के तो ब्याह होगा ही नहीं, तो वंश नष्ट नहीं होते क्या होगा आप बताओ। यार उसमें कहा है कि 25 वर्षों के बाद 4 छोरियों के बीच में 2 छोरा रहेगा, तो नसबंदी कर दो, गर्भ गिरा दो, इससे नष्ट हो जाए, और फिर नष्ट हो जाए नहीं तो छोरी का गर्भपात करो तो छोरों को ब्याहेंगे कहां? जहां 4 छोरे रह जाए 2 छोरी रहेगी, तो एक एक आदमी के दो, एक एक छोरी का 2-2 छोरी के साथ छोरे के साथ ब्याह होगा, और ब्याह नहीं होगा तो नष्ट नहीं होते क्या होगा? वंश खत्म हो जाएगा। हम दो और हमारे दो कहते थे, आजकल कुछ मैंने सुन कर नहीं, आजकल के एक ब्याह करे तो प्रतिज्ञा कराओ कि तुम्हारा संतान एक ही रहे, 2 नहीं, पहले 3 था फिर 2 हुआ अब 1 ही है, ऐसी बात सुनी है। अब क्या दशा होगी कि 2 हो तो कहां अन्न खाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे विचार करेंगे? आप कृपा कर थोड़ी मेरी बात सुन लो, मानने के लिए मैं आग्रह नहीं करता हूं, आपको ठीक देख तो मानो नहीं मत मानो, पर नशा क्या होगी ये तो सोचो। आप एक आपके हम दो और हमारे 2 आपके बसे हुए, जन्म पर तो आपने कंट्रोल कर लिया, मरने पर कंट्रोल है आपका? वे मर जाएंगे 2 छोरेंगे तो मेरे सामने आए हैं ऐसे, हमारे छोरे थे, हमारे पागल कुत्ता खा गया, वो मर गया, अब क्या करें? छोरा हमने ऑपरेशन करा लिया, बच्चा तो होता नहीं, अब क्या करें? एक छोरा रहे हमारा, आप कृपा करो। अब मैं कृपा करूं? कृपा तुम करो, खान तुम्हारे घर में उसको तो कर दे नष्ट, अब कृपा मांगते फिरते दूसरों से, क्या दशा होगी सोचो जरा। अच्छा 2 आपके होंगे, 2 आपके वो खेती करेगा, घर का काम करेगा, और कुछ दुकान करेगा, दलाली करेगा, क्या करेगा? 2 आदमी घर के काम में बंधे रहेंगे, ज्यादा होगा तो कोई खेती करेगा, कोई दलाली करेगा, कोई मतलब व्यापार करेगा, कोई तरह तरह के काम करेंगे और खेती होगी। 2 आदमी होंगे तो खेती कौन करेगा? अगर खेती नहीं करेगा तो अन्न कैसे निपजेगा? अन्न नहीं निपजा तो खाएंगे क्या? तो मरेगा कौन? कहते हैं कि ज्यादा संख्या होने से अन्न चाहिए, ये ज्यादा संख्या करने से पीछे की बात में अभी अन्न क्या भाव है और इससे पहले भाव मेरे को याद है, 12 शेर की कनक गेहूं मिलता था, 12 शेर का 13 शेर का मेरे सामने, आज कितना मिलता है रुपये का? खेती में जानवरों को मारो, टीडी को मार दिया, जानवरों को मारो, मुसलमान मारो, अरे अंत में नतीजे क्या हुआ, उपजता है क्या? अरे खेती करेगा कौन? जब 2 ही बच्चे होंगे तो नहीं तो कोई खेती करेगा, कोई घर का काम करेगा, कोई बाहर का काम करेगा। अरे बिना जोते हुए जमीन बहुत बाकी पड़ती है, खेत करने में तो थोड़ी जमीन काम, जमीन बाकी पड़ी, अरे आदमी बाकी होंगे तो खेत करेंगे तो आपके अन्न बहुत होगा, अगर मर जाएंगे तो खेती कौन करेगा? तो भूखा मरते मरोगे? वे तो कहते हैं ज्यादा आदमी होने से मरेंगे, हम कहते कम आदमी होने से मरेंगे, खेती नहीं करेगा तो कैसे जिएंगे बताओ, आप बताओ। अरे फिर आज फौज में भर्ती हिंदू है तो कहीं जंगा होता तो हिंदू जाते हैं, वो शांत करते हैं, और जब मुसलमान और ईसाई ये ज्यादा बढ़ गए तो फौज में भर्ती वही होंगे। दुआरियों फौज में भर्ती कौन होगा? वही फौज में भर्ती होंगे। दंगा वहां जाएंगे, गोलियां मारेगा आपके, या खत्म हो जाओगे बेचते हुए भी। ये जरा सोचो, फौज में कौन जाएगा? एक दो आदमी घर का काम करेगा, फौज में भर्ती होगा? कोई साधु होगा तो साधु कौन होगा? दो ही तो ठहरे छोरा। साधु में कौन पढ़ेगा, कौन विचार करेगा, कौन वृद्ध तोड़ेगा, कौन त्यागी होगा, कौन बात बताएगा सच्ची बात बताने को? माथा कहां से लाएगा? पढ़ाई करने के समय कहां मिलेगा? हम लोगों को समय मिलता है, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, विवेक करते हैं, वो कौन करेगा? तो फौज में कौन भर्तीगा? साधु कौन होगा? सब काम कौन करेगा? अब ये उदय होना चाहिए। विदेशों में ये परिवार नियोजन चला, उनसे श्रमिका घटी। अब भगवान का विचार आ गया है उसका ठीक करने के लिए, जिसमें विचार करके वे अब कहते हैं ये प्रवाही बंद करो और अब तो प्रजा बढ़ाओ। उन बढ़ाने के लिए वहां देशों में बता दिया है कि दो संतान हो उसको कम से एक कानून का जो टैक्स है वो कम कर दिया जाएगा, और छह सात बालू तो बिल्कुल टैक्स माफ है उनको, और घर छोड़े हैं तो राज की तरफ से कमरा बना हुआ है, जितने लड़के उतने कमरा बना हुआ है, राज बना कर देता है, नहीं तो हमारी संख्या नष्ट हो जाएंगे। एक मुसलमान ने लिखा है बर्थ कंट्रोल एक पुस्तक लिखी है, उसमें ये लिखा है, अलग अलग आंकड़ा दिया है, फ्रांस में क्या है, चीन में क्या है, जापान में क्या है, हिंदुस्तान में क्या है, क्या क्या कितने कभी हुए हैं और किस किस तरह की चलती है आवाज, वे आगे इस वास्ते, अब यहाँ पे घटाने वाज चलती है। क्यों घटाने चलती है इसकी बात मैंने सुनी है। राज कानून लिया, अब ये प्रथा आवाज चली जिससे कंगला हो गया देश, कहते हैं हिंदुस्तान बिक जाए तो इसकी पूर्ति नहीं होगी। 4-5 हजार एक एक आदमी के ऊपर इतना कर्जा है आज हिंदुस्तान में, और सबरी बिक्री हो जाए तो पूरा कर्जा होगा नहीं, पूरा पूर्ति नहीं होगी, ऋण पूरा नहीं होगा। अब तो इतनी बात करी तो खर्चा तो करो ज्यादा, अरे काम करो कम, ज्यादा काम करे तो कैद कर दे। अब ज्यादा काम नहीं करे तो खाने में तो कम करते नहीं, ये तो धार्मिक बात थी एकादशी का व्रत, ये तो सांप्रदायिक चीज है, ये ठीक नहीं है, ये तो सब ठीक है। और खर्चा ज्यादा करो, ऐसा ज्यादा करो, अपने हाथ से काम करो, मैं दूसरों से करो। मैंने सुना एक जगह नौकरी करने को गए तो उनको परीक्षा करी, परीक्षा करने के बाद वो नौकरी में ठीक है, तो वो वहां बैठा तो उसने कुर्सी खींच करके उसमें बैठ गया कि अनफिट है ये, हाथ से लाता है कहना चाहिए लाओ कुर्सी लाओ, ऐसा कहना चाहिए कि अनफिट ना कर नौकरी में रहेगा नहीं, अनफिट बताओ। काम करना नहीं और खर्चा करना ज्यादा, ऐसा आराम करनी, सजावट करनी, बढ़िया करनी, खर्चा करना फिर पैदा करना नहीं, क्या देश की दशा होगी आप देख लो। जिन दिनों में कोई जानवर को मारता नहीं था, मेरे को ठीक याद है 12-13-14 वर्षों का मैं था, टीडी आती थी तो वे कहते अब टीडी आई है अब काटना पड़ेगा, सब लोग ऐसे कहते अब हमारे लिए नहीं तो इन जीवों के लिए तो भगवान को वर्षा करनी पड़ेगी। एक खेत होता था खूब और वर्षा होती थी अच्छी तरह से, मेरे को याद है 65 संवत की बात है, 5 वर्ष था मैं छोटा सा, उस समय वर्षा तो वर्षा आती जोर से, और भाई तेज वस्तु भीतर रखते रखते एकदम खूब वर्षा हो जाती। आज वर्षा यहाँ तो हो गई वहां धोरे पर नहीं हुई, धोरे पर हो गई यहाँ हुई नहीं, ये दशा आज है। पहले अति जोर से वर्षा होती थी, कल वारे ही वारे दुकाल पड़े बिन अन्न दुखी बहु लोक मरे, ये कल तुम्हें होगा। अब वो वस्तु मनुष्य ज्यादा हो जाने खाएंगे क्या, मालूम होता है कि अन्न तो बढ़ा कर रखा है, अब मनुष्य उनमें से पानी होगी, अरे मनुष्य होगा तो खेती ज्यादा होगी तो उपज ज्यादा होगी, कमती कैसे हो जाएगी? खेती तो करोगे नहीं तो मरोगे भूखा, और कौन मरेगा? तो व्यवहार जो चीज है वो व्यवहार में ठीक तरह समझो, व्यवहार में परमार्थ सिखाती है गीता, आपका वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, इन धर्मों के अनुसार स्वीय कर्म करते संसिद्धि लभते नर। व्यवहार में परमात्म कला बता रही है गीता, उसका ख्याल ही नहीं करते। धर्मरहित करो, धर्मरहित क्या करेगा बताओ? एकांत में चाय शुरू करो, क्यों? धर्मरहित है, धर्म कोई है नहीं। आपके धर्मो धर्म है महाराज, धर्मो रक्षति रक्षित धर्म एवं हतो हंती। धर्म का नाश आप करोगे, आपका सत्यानाश हो जाएगा आपसे आप। मैंने इसकी बातें देखी है। अब एक गीता प्रेस में मैं था कुछ वर्ष पहले की बात, एक बताऊं समझ जाता हो जाएगा। तो वह मजूर सब इकट्ठे होकर के उन्होंने बताया कि गीता प्रेस में अपने अपने अपनी कब्जे में लो और अपने संखा पढ़ाओ ऐसे। तो मजूरों ने एक होकर के और हम नहीं काम करेंगे गीता प्रेस का, बड़ा हल्ला हुआ। तो उन्होंने ऐसे यूनियन करे किया, तो शेठ जी वहां थे, मैं भी वहीं था गोरखपुर में ही। तो कहा भी अपने राज्य से छुट्टी ले लो, ये बंद करेंगे हम नहीं करेंगे, तो उनसे पहले हम कर दें, क्योंकि हम अब अनिश्चित काल के लिए प्रेस बंद करते हैं। बंद कर दिया। अब वो हल्ला करने लगे और मैंने कानून सुना, नाश हो गीता प्रेस के पिट्ठों का नाश हो, पिता गीता प्रेस के कुत्तों का नाश हो, कुत्ते ऐसा नाश हो, और जगह जगह सभा करते गीता प्रेस ने नुकसान किया, गीता प्रेस व्यापार करती है और व्यापार में दूध का व्यापार किया, घी बनाया, उसमें बहुतों का पेट बढ़ गया, छोरे मर गए, ऐसी ऐसी बातें बहुत कही। शेर जी ने कहा भाई अब मीटिंग करो, ट्रस्टियों की मीटिंग करो, हमें क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर। तो मीटिंग हुई, मीटिंग बोला ज्वाला प्रसाद जी कानोड़िया मंत्री थे, कलकत्ते में रहते थे, वो मंत्री थे, उन्होंने सभा का मीटिंग का आयोजन किया और कलकत्ते में वो आए गोरखपुर में। मेरे सामने बात बड़ी विचित्र हुई, इस बात कहता हूँ मैं। शेठ जी सहदयाल जी बोले देखो ज्वाला प्रसाद जी ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसे ये कबात करते हैं, जो हमारे दोष है ही नहीं, ऐसे ऐसे दोष देते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, देखो सुन लगे गांव भर में शहर भर में ऐसा हल्ला कर दिया है, अब हम लोग क्या करना चाहिए। शेठ जी तो ऐसे कहते थे, ज्वाला प्रसाद जी बोले महाराज क्या बताऊं आप, ऐसी सुंदर बोले कि देखो हमारे साथ शत्रुता रखने वाला अगर धर्मात्मा हो तो उससे तो डरना चाहिए, उन्होंने झूठ स्वीकार कर लिया, अब डरने की कोई जरूरत नहीं, वे आपने आपने पैर काट दिए, वे मरेंगे आप ही, जब हमारे साथ शत्रुता रखता रहो वो अधर्म को ले लेता है, अब उनका नाश आपसे आप होगा। तो ये बात हुई, फिर उन्होंने गर्ज करी, उन नेताओं को बुलाया, उन्होंने गर्ज करी, शेठ जी ने सभा में उन मजदूरों की सभा में उनको समझाया कि हमें बाप बेटे की तरह, माता की नौकर की तरह, बाप बेटे की तरह हमारा पवित्र संबंध था, आपने बताया कि हमने किया साहब उन्नति के उन्नति दी का अवनति करी है, इनके अंतःकरण में हमारे बैर पैदा कर दिया, मालिक और मजदूरों में बैर होगा तो क्या दशा होगी और प्रेम होने में क्या दशा होगी। तुम प्रेमानाश किया, फटकारा शेठ जी ने सभा के बीच उनकी मजदूरों की सभा में, तुमने इनको शिखा शिखा क्या सत्यानाश कर दिया आपने, तो चुप हो गए वो। अरे धर्म तो रक्षा करना है, धर्म को आप छोड़ के आप रक्षा करेगा कौन, अब धर्म नहीं होना चाहिए हमारा। पहले तो भीतर भीतर का अब चौड़े धारे कहे धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए।